एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं।
हाँ, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। ये जो प्रकृति में इतनी कमाल की, इतनी जटिल चीजें हैं,
जैसे हमारी आंखें हैं या पक्षियों के पंख,
हाँ, ये सब बनी कैसे? मतलब क्या कोई डिजाइनर है इसके पीछे?
इसी पहेली को समझने के लिए आज हम रिचर्ड डॉकिंस की एक बहुत ही जानी मानी किताब है, क्लाइंबिंग माउंट इम्प्रोबेबल।
हाँ, हिंदी में कहें तो अशक्य पर्वत पर आरोहण। इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर गौर करेंगे।
और ये विषय आज भी आप देखें तो बहुत जरूरी है।
क्यों? मतलब विकासवाद तो ठीक है, पर आज इसका क्या महत्व है?
देखिए, ये सिर्फ एवोल्यूशन को नहीं समझाता, ये भी दिखाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता अक्सर छोटे छोटे धीरे धीरे होने वाले बदलावों से कैसे बनती है।
अच्छा,
तो ये नजरिया शायद हमें विज्ञान को बेहतर समझने में और यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को देखने में भी मदद कर सकता है।
दिलचस्प। तो आज हमारा इरादा यही है कि डॉकिंस के तर्कों को समझें।
हाँ, और देखें कि कैसे ये जो प्राकृतिक चयन है, नेचुरल सिलेक्शन, जिसकी प्रक्रिया धीमी है, लगातार चलती है,
जिसे डॉकिंस ने वो पहाड़ पर चढ़ने जैसा बताया है,
बिल्कुल, कैसे वो प्रक्रिया जीवन की इस अद्भुत जटिलता को समझाती है।
ठीक है, तो शुरू करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात हो जाए। रिचर्ड डॉकिंस।
हाँ, रिचर्ड डॉकिंस ये दुनिया के सबसे जाने माने विकासवादी जीव विज्ञानियों में से हैं, और सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं,
विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है।
बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे और उनके लिए तो खास एक पोस्ट बनाई गई थी, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस
के प्रोफेसर।
ये बड़ी बात है ना, मतलब विज्ञान को सरल बनाना ही उनका एक मुख्य काम था। हाँ, और उनकी जो पिछली किताबें थीं जैसे द सेल्फिश जीन या फिर द ब्लाइंड वॉचमेकर,
द ब्लाइंड वॉचमेकर तो काफी मशहूर हुई थी।
हाँ, उसमें उन्होंने ये तर्क दिया था कि प्राकृतिक चयन जो है वो एक अंधे घड़ीसाज जैसा है।
अंधा घड़ीसाज?
मतलब वो घड़ियां तो बना रहा है, यानी जटिल संरचनाएं बना रहा है, पर बिना किसी पहले से तयशुदा प्लान के,
बस धीरे धीरे जो काम कर गया वो रह गया।
हाँ,
अच्छा समझा। तो ये किताब क्लाइंबिंग माउंट इम्प्रोबेबल उसी विचार को आगे बढ़ाती है।
बिल्कुल, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि कुछ चीजें जैसे आंख, वो इतनी जटिल हैं कि वो धीरे धीरे बनी नहीं सकती।
हाँ, कि ये तो भाई एक ही बार में बनी होगी, किसी ने बनाई होगी।
एग्जैक्टली, इसी सोच को डॉकिंस कहते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पर्सनल इनक्रेड्यूलिटी,
व्यक्तिगत अविश्वास का तर्क। मजेदार नाम है।
हाँ, मतलब क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है तो जरूर ये हुआ ही नहीं होगा।
आहा, ये तो हम कई बार करते हैं।
डॉकिंस इसी सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं भाई, हमारी कल्पना की जो सीमा है वो प्रकृति की संभावनाओं की सीमा थोड़ी ना है।
सही बात है। तो चलिए अब किताब के जो मुख्य विचार है उस पर आते हैं।
हाँ, तो डॉकिंस का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जीवन में जो जटिलता हम देखते हैं वो कोई चमत्कार नहीं है,
और न ही किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर का काम।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लाखों बल्कि करोड़ों सालों में हुआ है, धीमा, स्टेप बाय स्टेप, और सबसे जरूरी संचयी यानी क्यूमुलेटिव प्राकृतिक चयन, एक के ऊपर एक बदलाव जुड़ता गया।
और इसको समझाने के लिए उन्होंने वो माउंट इम्प्रोबेबल वाली बात कही है ना, अशक्य पर्वत।
हाँ, ये बड़ा जबरदस्त रूपक है। सोचिए, एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और सामने से देखो तो एकदम सीधी खड़ी चट्टान है, वहां से तो चढ़ना नामुमकिन लगता है।
जैसे ये सोचना कि भाई बिना आंख के सीधे एक पूरी आंख बन गई, असंभव।
बिल्कुल, लेकिन फिर डॉकिंस कहते हैं चलो पहाड़ के पीछे चलते हैं।
अच्छा,
और पीछे क्या है? पीछे एक रास्ता है, लंबा है, घुमावदार है, ढलान भी बहुत हल्की है, पर है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं।
ओ अच्छा, तो ये जो पीछे वाला रास्ता है
वही है संचयी चयन, क्यूमुलेटिव सिलेक्शन।
मतलब
हर छोटा सा सुधार, बहुत मामूली सा भी हो, अगर वो जीव को जिंदा रहने में या बच्चे पैदा करने में जरा सी भी मदद करता है
तो वो अगली पीढ़ी में ज्यादा पाया जाएगा।
हाँ, और ऐसे ही छोटे छोटे सुधार पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते जाते हैं लाखों साल तक।
तो विकास कोई एक बड़ी छलांग नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उस पहाड़ पर धीरे धीरे कदम दर कदम चढ़ने जैसा है, बहुत धैर्य वाला काम है, यही संचयी प्रक्रिया है जो जटिलता बनाती है।
ये तो हुआ तर्क, लेकिन क्या डॉकिंस इसके सबूत भी देते हैं, उदाहरण?
अरे बिल्कुल, किताब भरी पड़ी है उदाहरणों से। एक बहुत मजेदार उदाहरण है हम स्तनधारियों में, खासकर जिराफ में, एक नस का।
नस? कौन सी नस?
इसे कहते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये नस दिमाग से जाती है हमारे स्वर यंत्र तक, मतलब आवाज निकालने वाले अंग तक।
अच्छा, तो इसमें क्या खास बात है? सीधा रास्ता होगा?
यही तो मजा है, रास्ता सीधा नहीं है।
अरे कैसा है फिर?
ये नस दिमाग से निकलकर सीधे स्वर यंत्र जाने के बजाय पहले गर्दन में नीचे उतरती है।
नीचे? कहाँ तक?
दिल के पास तक। वहाँ एक बड़ी धमनी होती है, एओर्टा, उसका चक्कर काटती है और फिर वापस गर्दन में ऊपर चढ़कर स्वर यंत्र तक पहुँचती है।
क्या बात कर रहे, इतना लंबा चक्कर? और जिराफ में तो गर्दन इतनी लंबी होती है।
हाँ सोचिए, जिराफ में ये नस कई फीट का फालतू का चक्कर लगाती है।
ये तो वाकई अजीब है, कोई मतलब है इस रास्ते का?
कोई मतलब नहीं, और यही डॉकिंस का पॉइंट है। ये कोई बढ़िया उत्तम डिजाइन नहीं है।
तो फिर ऐसा क्यों है?
ये हमारे मछली जैसे पूर्वजों से मिली हुई एक निशानी है, एक ऐतिहासिक बोझ है।
मछली जैसे पूर्वजों से? कैसे?
उनमें दिल और गलफड़े, जिससे बाद में हमारा स्वरयंत्र बना, पास पास थे, तो ये नस सीधी जाती थी।
अच्छा।
लेकिन जैसे जैसे गर्दन लंबी होती गई लाखों सालों में, वो नस उस धमनी के नीचे फंसी रह गई और खिंचती चली गई, उसे फान कर सीधा रास्ता नहीं बना पाई।
अरे बाप रे, तो ये तो एक तरह की खराबी हुई डिजाइन में।
बिल्कुल, और यही तथाकथित खराब डिजाइन असल में विकास का बहुत मजबूत सबूत है।
कैसे?
क्योंकि ये दिखाता है कि प्रकृति कोई सोच समझ कर डिजाइन करने वाला इंजीनियर नहीं है, वो तो एक टिंकरर है।
टिंकरर मतलब जुगाड़ू मैकेनिक जैसा?
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, जो पुरानी चीजों में ही फेर बदल करके काम चलाता है। शून्य से कुछ नया परफेक्ट नहीं बनाता, वो अपने इतिहास से बंधा हुआ है।
ये जुगाड़ वाली बात तो हमें समझ आती है, भारत में तो जुगाड़ चलता ही है।
हाँ, बस फर्क ये है कि ये बिना सोचे समझे होता है। लेकिन ये सवाल फिर उठता है कि अगर डिजाइन इतना जुगाड़ू है, तो आंख जैसी कमाल की चीजें कैसे बन गई?
हाँ ये बड़ा सवाल है, आंख तो बहुत जटिल लगती है।
पीढ़ी में चुनते हैं कि कौन सा आकार आगे बढ़ेगा।
अच्छा, मतलब चयन, सिलेक्शन।
सही, और ये प्रोग्राम दिखाता है कि कैसे इन सरल नियमों से ही धीरे धीरे कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत जटिल पेड़ पौधे या कीड़े जैसे दिखने वाले आकार बन सकते हैं,
बिना किसी पहले से तय लक्ष्य के।
हाँ, यही खास बात है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि क्या बनाना है, बस छोटे छोटे बदलाव जमा होते जाते हैं और जटिलता अपने आप उभरती है। ये प्रकृति में होने वाले संचयी चयन का एक मॉडल जैसा है।
ये दिलचस्प है। अच्छा, और डॉकिंस उन मुश्किल सवालों का क्या जवाब देते हैं, जैसे आधा पंख किस काम का?
हाँ, ये क्लासिक सवाल है विकासवाद के विरोधियों का, कि अगर पंख उड़ने के काम आता है, तो जब वो आधा बना था तब तोड़ नहीं सकता था, तो वो बेकार था, फिर वो चुना क्यों गया?
सही बात है।
डॉकिंस कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो काम आज पंख कर रहा है उड़ना, वही काम उसके शुरुआती रूप ने भी किया हो।
मतलब?
हो सकता है कि शुरू में जो छोटे उभार थे, वो कूदने में बैलेंस बनाने के काम आते हों।
अच्छा।
या शरीर का तापमान कंट्रोल करने में मदद करते हों, या शायद साथी को रिझाने के काम आते हों।
ये भी हो सकता है।
तो हर छोटा कदम अगर उस समय कोई ना कोई फायदा दे रहा था, तो वो चुना जा सकता था।
अच्छा।
और धीरे धीरे लाखों सालों में वो उभार बड़े होकर उड़ने लायक पंख बन गए।
और ये भी तो है कि उड़ान कई बार अलग अलग विकसित हुई है।
हाँ बिल्कुल, कीड़ों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में, यहाँ तक कि डायनासोर के जमाने के टेरोसोर्स में भी, सबने उड़ने की समस्या का अपना अपना हल निकाला।
इसे कहते हैं अभिसारी विकास,
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
कमाल है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े चैलेंज पर,
आंख।
हाँ जी, आंख। इसे तो अक्सर अघुलनशील जटिलता, इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का पोस्टर चाइल्ड माना जाता है।
मतलब कि ये इतनी पेचीदा है कि इसके सारे हिस्से एक साथ ही काम करते हैं, एक भी हटा दो तो पूरी बेकार। तो ये धीरे धीरे कैसे बनी होगी?
मुझे भी ये हमेशा बहुत हैरान करता था कि भाई आधी आंख का क्या फायदा, लेकिन डॉकिंस जो तर्क देते हैं वो सोचने पर मजबूर करता है।
क्या तर्क देते हैं?
वो कहते हैं, पहली बात तो ये कि ये असंभव नहीं है, और सबूत ये है कि जानवरों की दुनिया में आंखें कम से कम 40 बार अलग अलग समूहों में अपने अपने तरीके से विकसित हुई हैं।
40 बार अलग अलग?
हाँ, हमारी आंखें कैमरे जैसी हैं, कीड़ों की आंखें कंपाउंड होती हैं जिनमें हजारों छोटे लेंस होते हैं, और भी कई तरह की आंखें हैं।
अच्छा, तो ये कैसे हुआ होगा धीरे धीरे?
वो एक बहुत लॉजिकल क्रम बताते हैं। सोचिए, शुरुआत हुई होगी त्वचा पर कुछ कोशिकाओं से जो सिर्फ रोशनी के प्रति संवेदनशील थीं,
मतलब सिर्फ उजाला और अंधेरा पहचान सकती थीं।
हाँ, ये भी एक फायदा था, है ना, शिकारी से बचने या खाना ढूंढने में।
सही। फिर
शायद वो कोशिकाएं एक छोटे से गड्ढे में धस गईं, कब जैसा बन गया।
उससे क्या हुआ?
उसे ये पता चलने लगा कि रोशनी किधर से आ रही है, दिशा का ज्ञान, ये और बड़ा फायदा।
ठीक है, आगे।
फिर शायद उस कप का मुंह थोड़ा सिकुड़ गया, जैसे पिन होल कैमरा होता है।
हाँ हाँ।
उसे एक धुंधली सी ही सही पर छवि बनने लगी होगी।
अरे वाह।
फिर उस छेद पर एक पारदर्शी झिल्ली बन गई होगी, सुरक्षा के लिए,
जैसे हमारे आंख की कॉर्निया।
हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर वही झिल्ली धीरे धीरे मोटी होकर लेंस में बदल गई होगी, जो रोशनी को फोकस करके साफ तस्वीर बना सके।
कमाल है। तो हर कदम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, पिछले से बेहतर था।
बिल्कुल। और हर कदम ने जीव को जिंदा रहने में थोड़ी और मदद की, तो वो चुना गया। आधी आंख भी काम की थी।
और क्या आज भी हमें ऐसे बीच के चरणों वाली आंखें मिलती हैं प्रकृति में?
हाँ, कई सरल जीवों में आंख के विकास के ये अलग अलग चरण आज भी देखे जा सकते हैं। ये दिखाता है कि जटिलता धीरे धीरे बन सकती है। परफेक्शन का सवाल नहीं है, बस काम चलाने लायक होने का है।
प्रकृति में परफेक्ट कुछ नहीं, बस पर्याप्त रूप से अच्छा। ये बात समझ आई।
डॉकिंस एक और मजेदार कॉन्सेप्ट लाते हैं, मॉर्फोस्पेस।
मॉर्फोस्पेस, ये क्या है?
इसे समझाने के लिए वो घोंगे और सीपियों के जो खोल होते हैं उनका उदाहरण देते हैं। मॉर्फोस्पेस मतलब गणितीय रूप से जितने भी तरह के जैविक आकार संभव हो सकते हैं उनका एक काल्पनिक दायरा।
अच्छा।
जैसे
एक लाइब्रेरी जिसमें हर तरह की डिजाइन की किताबें हों।
हाँ, कुछ वैसा ही। कंप्यूटर मॉडल दिखाते हैं कि सिर्फ कुछ गणितीय नेम बदलकर ही आप अनगिनत तरह के खोल डिजाइन कर सकते हैं, गोल, नुकीले, चपटे, स्पाइरल।
लेकिन हमें तो कुछ ही तरह के दिखते हैं असल में।
हाँ, क्योंकि प्राकृतिक चयन उस लाइब्रेरी से सिर्फ वही किताबें या ब्लूप्रिंट्स चुनता है जो असली दुनिया में काम की हों, जो उस जीव के लिए फायदेमंद हों। बाकी सब सैद्धांतिक रूप से भले ही संभव हो पर व्यावहारिक नहीं है।
ये भी दिलचस्प है। अच्छा, और विकास सिर्फ अकेले जीवों का नहीं होता, साथ साथ भी होता है।
बिल्कुल। इसे कहते हैं सह विकास, को एवोल्यूशन, जब दो प्रजातियां एक दूसरे के विकास को प्रभावित करती हैं। डॉकिंस इसका एक अद्भुत उदाहरण देते हैं, अंजीर का पेड़ और एक खास तरह की ततैया।
वॉस्प।
अंजीर और ततैया, इनका क्या रिश्ता है?
ये रिश्ता इतना गहरा और खास है कि अंजीर का परागण, पॉलिनेशन, सिर्फ वही ततैया कर सकती है, और वो ततैया अपने अंडे सिर्फ उसी अंजीर के फल के अंदर दे सकती है।
क्या मतलब? एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते या बच्चे पैदा नहीं कर सकते?
बिल्कुल, पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर है। ये दिखाता है कि प्राकृतिक चयन कैसे इतने जटिल और नजदीकी रिश्ते बना सकता है, जैसे शिकारी और शिकार की दौड़ होती है ना। हाँ, एक तेज भागता है तो दूसरा और तेज हो जाता है।
वैसा ही कुछ। ये आपसी लेन देन विकास को और गति देता है।
और इन सबका सबसे पक्का सबूत कहाँ मिलता है?
डीएनए में। डॉकिंस कहते हैं कि डीएनए हमारे विकास के इतिहास का सबसे पक्का, सबसे विश्वसनीय रिकॉर्ड है।
हमारे जीन्स में ही सब लिखा है।
हाँ, हर जीव के जीनोम में उसके लाखों करोड़ों साल के पूर्वजों की कहानी दर्ज है।
और हम उसे पढ़ सकते हैं?
हाँ, अब वैज्ञानिक अलग अलग प्रजातियों के डीएनए की तुलना करके बता सकते हैं कि कौन किससे कितना करीब है, कब उनके रास्ते अलग हुए। ये उस अशक्य पर्वत पर चढ़ने का पूरा डिजिटल लॉगबुक जैसा है।
ये तो कमाल है। ये फॉसिल रिकॉर्ड और शरीर रचना से मिले सबूतों को कन्फर्म करता होगा?
बिल्कुल, कन्फर्म भी करता है और उससे कहीं ज्यादा बारीक जानकारी देता है।
तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब के विचारों से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं, मोटी मोटी बातें?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है संचयी चयन की ताकत। छोटे छोटे बदलावों को जमा करके बड़ी बड़ी जटिल चीजें बन सकती हैं। यही उस पहाड़ की आसान ढलान है।
हाँ, और दूसरी बात क्रमिकता। विकास धीरे धीरे छोटे कदमों से होता है, कोई अचानक बड़ी छलांग नहीं।
बिल्कुल, पंख या आंख रातों रात नहीं आए, हर बीच का कदम अपने आप में फायदेमंद था।
तीसरी बात, वो जो व्यक्तिगत अविश्वास का तर्क था।
हाँ, कि वो एक भ्रम है, सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ अविश्वसनीय लगता है वो नामुमकिन नहीं हो जाता। हमारी कल्पना अक्सर प्रकृति की विशालता और समय के पैमाने को नहीं समझ पाती।
ये बात सही है, हमें अपनी सोच की सीमाओं को समझना चाहिए। और
चौथी, वो जो मुझे बहुत पसंद है, विकास एक टिंकरर है, इंजीनियर नहीं।
हाँ, वो जुगाड़ू मैकेनिक वाली बात, जिराफ की नस।
एग्जैक्टली। ये जो कमियां या अजीबोगरीब डिजाइन दिखते हैं वो असल में विकास का सबूत हैं, इतिहास की छाप हैं।
एक परफेक्ट डिजाइनर ऐसी गलतियां नहीं करता। और
सह विकास, प्रजातियों का आपसी लेन देन, चाहे वो दोस्ती का हो या दुश्मनी का, विकास को नई दिशाएं देता है और जटिलता बढ़ाता है।
जैसे अंजीर और ततैया, या शिकारी और शिकार।
हाँ, और छठी बात, डीएनए हमारा अंतिम रिकॉर्ड है। जीवन की पूरी कहानी हमारे जीन्स में लिखी है। ये विकास के सिद्धांत को विज्ञान का एक बेहद मजबूत स्तंभ बनाता है।
इस किताब में कुछ विचार वाकई बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे वो माउंट इम्प्रोबेबल का रूपक ही है।
हाँ, वो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। सामने से देखो तो दीवार, पीछे से देखो तो रास्ता।
और वो व्यक्तिगत अविश्वास वाली बात भी ये याद दिलाता है कि विज्ञान सबूतों पर चलता है, हमारी पसंद नापसंद पर नहीं।
बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं होता, ये कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है।
और विकास का टिंकरर होना, ये भी कितना गहरा विचार है।
हाँ, ये समझाता है कि विकास हमेशा अतीत से बंधा होता है। आप नया घर बनाते वक्त पुराने घर का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ वैसा ही।
और डीएनए को वो सूचना की नदी कहना।
हाँ, अरबों सालों से बहती हुई नदी और हम सब जीव उसमें बदलते हुए पैटर्न, बहुत काव्यात्मक है पर सटीक भी है।
अब ये सब तो हो गई विज्ञान की बातें, लेकिन क्या इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई लेना देना है?
हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पहला तो है समस्याओं को हल करने का तरीका।
कैसे?
जैसे विकास बड़ी मुश्किलों जैसे आंख बनाना को छोटे छोटे कामयाब कदमों में तोड़कर हल करता है, वैसे ही हम अपनी बड़ी चुनौतियों को देख सकते हैं।
मतलब किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना।
हाँ, छोटे लगातार कदम अक्सर ज्यादा असरदार होते हैं बजाय एक बड़ी मुश्किल छलांग के।
ये तो मैनेजमेंट में भी कहते हैं।
अच्छा, और
दूसरा आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, वो अविश्वास के तर्क वाली गलती को पहचानना।
मतलब ये सवाल पूछना कि क्या हम किसी बात को इसलिए नकार रहे हैं क्योंकि वो अजीब लगती है या हमारे पास सच में उसके खिलाफ सबूत हैं।
बिल्कुल, आजकल खबरों में, विज्ञापनों में, हर जगह ये काम आ सकता है, अपनी पहली प्रतिक्रिया पर सवाल उठाना।
तीसरा
जटिल सिस्टम्स को समझना। जैसे सह विकास होता है वैसे ही हमारे समाज में भी होता है, बाजार में कंपनियों की होड़
या नई टेक्नोलॉजी का विकास।
हाँ, या देशों के आपसी रिश्ते, सब एक दूसरे पर असर डालते हैं और पूरा सिस्टम धीरे धीरे बदलता है।
सही है। और चौथा?
चौथा और शायद सबसे गहरा, वो है प्रकृति के प्रति सम्मान और धैर्य रखना सीखना।
धैर्य?
हाँ, जब हम समझते हैं कि ये सब बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं तो एक अजब सा आश्चर्य और आदर का भाव आता है, और ये सिखाता है कि बड़े बदलावों में वक्त लगता है, धीरज रखना जरूरी है।
हाँ, ये बात तो है। इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे खास या यादगार बात क्या रही?
मेरे लिए तो वो टिंकरर वाली बात ही है, जिराफ की नस वाला उदाहरण। वो विकास को इतना मानवीय, इतना समझने लायक बना देता है और ये दिखाता है कि कमियां भी कहानी कहती हैं।
हाँ, वो मेरे लिए भी बहुत असरदार था। और आपके लिए?
मेरे लिए शायद वो संचयी चयन की जो छिपी हुई ताकत है, आंख का उदाहरण। बापरे, ये दिखाता है कि अगर समय और सही दबाव हो तो प्रकृति क्या नहीं कर सकती। जो असंभव लगता है वो जरूरी बन जाता है। जटिलता कोई जादू नहीं है।
सही कहा। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन कितना अद्भुत है और ये सफर कितना लंबा रहा है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ भी छोड़ जाता है।
क्या सवाल?
कि अगर प्रकृति बिना किसी इरादे के, बिना किसी प्लान के इतनी जटिल और विविध चीजें बना सकती है, तो क्या हमारी अपनी क्रिएटिविटी में, हमारी टेक्नोलॉजी में, यहाँ तक कि AI के विकास में भी ऐसे ही अनजाने रास्ते हो सकते हैं जिनसे कुछ ऐसा बन जाए जिसके हमने कल्पना भी ना की हो? इस पर सोचेगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।